नमस्कार दोस्तों, मोबाइल ऑनली से आपका दोस्त योगी। हमारा आज का विषय है राजनीतिक का आयाराम गया और राजनीतिक दल। चुनाव लड़ने के लिए नेता जिस तरीके से दल बदल का खेल करते हैं, उसमें जनता का लोकतंत्र, विचारधारा, राजनीतिक वफादारी जैसे शब्द अपनी महत्ता को कैसे देखते हैं, और नेताओं द्वारा ऐसा करने के लिए केवल शब्द ही नहीं लोकतंत्र की भावना भी अपने वास्तविक अर्थ का को खत्म होते देख रही है, जो जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन संचालित होता है। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पे स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि राजनीति के उभरते नए स्वरूप के ऊपर मंच दिया है मुझे आपने चर्चा करने के लिए। जी कहिए
सर, राजनीति का आयाराम का दौर और विचारों की राजनीति पर कितना सही देखते हैं वर्तमान परिवेश सर?
देखिए, आज का जो परिवेश है ना सर, राजनीति एक फैशन बन गया है। मैं राजनीति को फैशन करूंगा क्योंकि जो राजनीति लाल बहादुर शास्त्री जी और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, वो राजनीति रही नहीं भारत में। तो आजादी के बाद तो उसका स्वरूप ही बदल गया। ये राजनीति केवल व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित हो गई। राजनीति का जो वास्तविक स्वरूप है, मानव कल्याण, जन कल्याण, वो नहीं रहा। अभी देखिए, दैनिक भास्कर पिछले बार एक रिपोर्ट में छपा था कि कुछ मतलब कई ऐसे विधायक है जो करोड़पति है। अब बताइए, ऐसा कौन सा काम करते हैं लोग? भाई यदि इस तरह की आय संसाधन जुटाने के कार्य प्रणाली इनके पास है तो वो जनता को भी बताना चाहिए। जनता की तो सालाना मतलब व्यक्तिगत आय देखी जाए दिन की तो सिर्फ मात्र 20 रुपए भी नहीं है। आज भी 38-39 करोड़ लोग मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और जिन मतदाताओं के द्वारा इनको चुना जाता है वो नेतृत्व प्राप्त करके करोड़ों अरबों के मालिक बन जाते हैं। अभी मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक कोई मिनिस्टर है एमपी के, जो 4 भाइयों में 40 एकड़ जमीन थी, आज उनके पास 1000 एकड़ जमीन है। ऐसा कौन सा काम करते भाई? उन्होंने ये सब कार्यप्रणाली जनता को भी सिखाना चाहिए। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं जिनके पास रोजगार है, उनको बताना चाहिए ऐसा कौन सा काम करते। ये लोग तो जनसेवा काम करते हैं ना, तो जनसेवा के काम करने के दौरान तो काम करने के लिए समय नहीं मिलता। तो ये जो व्यक्तिगत स्वार्थ का जो भाव है, इनके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति, इनका जो हलफनामा देखिए, अभी छिंदवाड़ा से भी कई ऐसे विधायक के फॉर्म भरे गए तो जिनकी 234 करोड़, किसी की 134 संपत्ति जो है, तो वो वाले सिद्धांत जनता को भी मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि मतदाता ही तो इनको नेतृत्व प्रदान करता है। जनता में ही इनकी प्रभुसत्ता निहित है कि जनता गरीब क्यों है, क्यों उनको अनाज की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, क्यों उनको सही कीमत नहीं मिलती, क्यों उनको बिजली की मुफ्त में मांग करना पड़ता है, क्यों उनको कर्जा। अरे आप सारी चीजें मुफ्त में दोगे तो पंजाब जैसी स्थिति बन जाएगी। आप ये सब बंद करिए, आप उनको निर्माण करने वाले तत्वों, उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित करिए ताकि वो स्व प्रेरित होकर अपने अपने बलबूते खड़ा हो। लेकिन इन्होंने ये सारी कमजोरियां बना के रखी, और ये केवल स्थानीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे केंद्र स्तर पे, ये केवल अपने स्वार्थ की राजनीति। वो भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल जी वाली राजनीति नहीं रही है। इनकी राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीति को इन्होंने फैशन बना दिया, एक मशीन बना ली कमाने की। जी सर।
सर, सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपने विचारों को किस तरीके से देखते हैं और राजनीति में सर वर्तमान परिवेश को देखते हुए?
देखिए, सही बात यदि कहे तो वैचारिक राजनीति रही नहीं है। सत्ता पक्ष एक समय सुशासन की बात करता था, आज कहाँ है सुशासन? आज देखिए, मध्य प्रदेश लड़कियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में पूरे भारत में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए, माफिया तंत्र, गुंडा तंत्र पूरे प्रदेश में विकसित हो रहा है। कुछ लोगों के पास राजनीति एक हथियार के रूप में विकसित होती जा रही। मतदाता केवल मतदान करने के लिए 5 साल के लिए एक बार यूज करता है, उसके बाद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। वैचारिकता कहाँ रही है? अभी देखिए, बहुत सारी जगह, जैसे मैंने देखा छिंदवाड़ा की बात करूं तो टिकट नहीं मिलने की वजह से कई ऐसे घटनाक्रम, अवरोध की स्थितियां, मतलब विरोध की स्थितियां निर्मित हो रही। तो मतलब इनका मूल उद्देश्य क्या है? तो ये सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई है। और राजनीति के आड़ में ये लोग सफेद पोश अपराध को बढ़ावा देते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए आपने देखा होगा अभी वर्तमान जो संसद है उसमें 144 लोग अपराधी है। उस दिन दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें कई ऐसे विधायक है जिनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगे। बस उनका ये कहना है कि आरोप लगा, सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए, अभी जो घटना हुई थी वहां पे दिल्ली में, लड़की जो महिला पहलवान थे उनके खिलाफ कितना मांग उठा था, क्या हुआ? सिद्धांत की लड़ाई कहाँ साहब? सुशासन नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सत्ता का निर्माण किया था उस सत्ता के आधार पर ना तो सत्ता पक्ष ना ही विपक्ष केवल अपने व्यक्तिगत हितों के स्वार्थ के लिए रही। इनके सैद्धांतिक वैचारिक धारा रही नहीं है। यदि वैचारिक धारा नैतिकता रहती ना तो जिला कब का बन जाता सोमसर? 140 साल नहीं लगता साहब उसको जिला बनने के लिए।
जी बोलिए सर। कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश की जनता अपना मतों का प्रयोग करेगी, सत्ता हो या विपक्ष हो दोनों ही, और से टिकट के लिए दौड़ की रेस देखी जा सकती है। इसमें विचारधारा और जनता के हित कहाँ देखते हैं सर?
ठीक है, विचारधारा तो है नहीं रही अब, व्यक्तिगत स्वार्थ रखता। टिकट बिकती है साहब, अब बताइए जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर वो कमाएगा भी ना, तो विचारधारा कहाँ रही? वो विचारधारा सिर्फ हमारे बीच में बहस करने के लिए रहती, फालतू में हम लोग बहस करते रहते। और रही बात मतदाता की, तो मैं कहूंगा कि संगठन पार्टी और व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विकास। आज देखिए कई ऐसे कानून है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन्होंने उसका निर्माण करके जनहित में उपयोगी नहीं बनाया उनको। और जनमानस इस बात को नहीं समझता, क्योंकि 100% साक्षरता का लक्ष्य अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है। अभी देखिए हम लोग धर्म को केवल अफीम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मंदिर धर्म इसकी उसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जनता को रोजगार नहीं होगा साहब तो उसका आर्थिक उपार्जन होगा कैसे? आर्थिक उपार्जन के लिए उसको अच्छा खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा, उसकी जो फसल होती है उसको अच्छे से कीमत देना पड़ेगा। यदि ये सब हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि कबीरदास जी का दुआ है ना कि भगवान भूखे पेट नहीं मिलता, तो भगवान को कहा था कि ये तुम माला कंठी रखो, मैं भूखे पेट भजन नहीं कर सकता। और जब किसान के पेट में अन्न नहीं रहेगा तो क्या वो हथियार नहीं उठाएगा बाद में? फिर नक्सलवाद उग्रवाद ये सब पनपता है। इसलिए ये जो दौर है, ये जो दल बदल वाली स्थितियां बन रही है, उग्रवाद मतलब दल बदल की जो स्थितियां बन रही है, लोग टिकट नहीं मिल रहे तो दल बदल रहे, ये कर रहे वो कर रहे, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आने वाले समय में लोकतंत्र की एक नई तस्वीर उभरने वाली है और इसका निर्माण जो है ना मतदाता ही करेगा। जी सर।
सर किसी भी खेल में या क्रिकेट या फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी चाहे पक्ष से खेल रहा हो या विपक्ष से खेल रहा हो, वो मैदान में उतर कर दोनों ही किसी एक की जीत पर दोनों ही सहमत होते हैं, कहीं ना कहीं पीछे से अपने हाथ मिले हुए देखते हैं, तो इस तरीके की सत्ता को किस रूप में देखते हैं सर?
देखिए खेल में साफ खेल भावना होती है
जी,
वहाँ खिलाड़ी देश के लिए खेलता है
जी,
जीत के लिए खेलता है, और वो टूट पड़ता है अपने देश को जिताने के लिए। अभी देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी रणनीति नीति के अंतर्गत एशिया में हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देश को शिखर पर ले जाना चाहते। केवल अकेला व्यक्ति शिखर पर नहीं ले जा रहा, लेकिन मान लीजिए उसी पार्टी में या विपक्ष में जो लोग हैं वो उनको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है साहब, बार बार मैं ये शब्द कह रहा हूँ, उनको अपने स्वार्थ से मतलब है। और इन लोग सीधे सीधे जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सफेद पोश अपराध से जुड़े रहते हैं। अभी देखिए छिंदवाड़ा की बात करूं, मैं छिंदवाड़ा जिले की बात करूं, संसद तहसील की बात करूं, कन्हान नदी का पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? मतलब आप उस चीज को हथियारने के लिए राजनीति के आड़ में सामने आ रहे हो। और विकास किस बात का कर रहे हैं आप? 140 साल में आप देखिए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं आया, किस बात का विकास की बात हो रही है? फिर कैसा विकास कर रहे हैं? और ये जो 50-50 का जो सिद्धांत का एक नया कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे अभी हमारे संसद क्षेत्र में स्थानीय स्तर पे राजनीति में, बिल्कुल सब एक दूसरे से ऐसा लगता है मिले हुए हैं, तो जनता जाएगी किसके पास? जो रेत हमको सस्ते में मिलती थी आज हम लोग कितना महंगी रेत मकान बनाना मुश्किल हो गया था, तो किसकी वजह से हुई, क्यों हुई? तो यहाँ पे आप स्वयं उठाए राजनीति के संरक्षण में। देखिए सब लोग जुड़े हुए हैं राजनीति के अंतर्गत, जितने भी लोग ये सब काम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए पुलिस को भी अपराध नियंत्रण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी देखिए निमनी में जो किसान ने आत्महत्या की थी, यदि वो कुछ स्थानीय स्तर के लोग यदि उस मुद्दे को नहीं उठाते तो राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत जो आका है वो उस मामले को निपटा देते। अब बताइए किसान अपनी बात कहाँ रखेगा, किसान का परिवार अपनी बात कहाँ रखेगा, सामान्य व्यक्ति का तो लगता है शासन ही नहीं रहा। अरे विकास, सुशासन, सुशासन स्वराज की सम्मान की बात करते हैं, आप कहाँ है बताओ। आप यदि किसी चीज का मुद्दा उठा के, जनता के बीच का मुद्दा उठा के, यदि आप प्रशासन शासन के बीच में जाते हो तो आपको दबा दिया जाता है, आपको कुचल दिया जाता है। तो कितने लोग दबा रहे हैं, सब 20% लोग जिन्होंने लोकतंत्र को अर्थतंत्र में, माफिया तंत्र में, गुंडा तंत्र में कन्वर्ट कर दिया। और ये बात जनता क्यों नहीं समझ रही, ये जनता को समझना चाहिए कि चुनाव हमारा भविष्य तय करता है, चुनाव हमारी पीढ़ी का भविष्य तय करता है, हमारी शिक्षा का स्वरूप, हमारा विकास का मॉडल तय करता है। ये बात जनता को समझना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार हमको अपनी उंगली का प्रयोग करने का ताकत मिलती है। और ये संवैधानिक ताकत हमको समझना है, दिल निडर और निर्भीक होकर अपने उंगली का प्रयोग करना चाहिए। हम एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण यदि करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा, अन्यथा बहुत दिक्कत है फिर। जी
जी सर। सर लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन होता है, पर वर्तमान में सत्ता हो या विपक्ष हो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं, क्या कारण देखते हैं
सर? एक बार फिर से प्रश्न बोलेंगे, क्या बोला आपने?
सर लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन का संचालन होता है, पर वर्तमान में सत्ता हो या विपक्ष हो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं, क्या कारण देखते सर?
अब देखिए साहब, अभी प्रत्यक्ष प्रमाण तो मेरे पास नहीं है
जी,
लेकिन जो जनमानस में जो चर्चा हो रही है कि जैसे साड़ियां बट रही है, शराब बट रही है, नोट बट रहे हैं, तो ये जनता जो है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। ये कुछ लोग है जो ऐसा मतलब कर रहे हैं, और राजनीतिक नेतृत्व ने कमजोरी समझ ली है मतदाता की। तो इसमें सभी लोग नहीं है, लेकिन जो लोग इस व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं वो निर्णायक मत निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों को एक दूसरे को दोषी मानते हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे, हम अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ पा रहे। अभी देखिए गवर्नमेंट ने कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सी विजिबल एक ऐप उन्होंने डाउनलोड करने के लिए कहा है कि आपको कहीं पे भी इस तरह की कोई अवैध गतिविधियां दिखती तो आप उसको सीधा डाउनलोड करके पोस्ट कर दीजिए, 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। अब स्थानीय स्तर पे देखिए प्रशासन जब नियंत्रण करता तो पुलिस को हर चीज, हर मोहल्ले की जानकारी नहीं रहती, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति को अपने घर के बाजू में क्या हो रहा है ये पता होता है
जी।
अभी उस दिन एक व्यक्ति मेरे से कह रहे थे, बोले साहब आप किसको वोट देते हैं? मैंने कहा जब से मैंने वोट देना चालू किया ना, इस दल को वोट दिया हूँ, लेकिन इस बार नहीं दूंगा, मैं सीधा बहिष्कार करूंगा उसको, क्योंकि मैंने अपने वोट के द्वारा एक अच्छी सरकार का निर्माण करने का दायित्व लिया ना, क्योंकि जनता के वोट के द्वारा सरकार का निर्माण होता है। वो सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, धमकाने का काम हो रहा, अपनी बात कहने का अधिकार हमको नहीं दे रही है, तो उस सरकार का क्या औचित्य है? चाहे वो सत्ता पक्ष है विपक्ष, सीधी बात जनता के कल्याण की होना चाहिए। उनके लिए ठीक से शिक्षा की व्यवस्था नहीं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जो जो धंधे फैक्ट्री है वहां रोजगार की कोई समस्या सुनने वाला नहीं, तो किस बात का विकास कहते हैं आप? सड़कें देखो तो ऐसा लगता है गड्ढे में सड़क है, सड़कों में गड्ढे है, ग्रामीण क्षेत्र की हालत देखिए, तो किस बात को हम लोग विकास कहे और कौन से? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पब्लिक ही है भाई, उनको पता है कि 500 का नोट मिल रहा है, मतलब सामने वाला गलत व्यक्ति, इसलिए आपको पैसे दे रहा है, और गलत व्यक्ति से आप पैसा लोगे तो गलत सरकार का निर्माण होगा, और फिर वो अपने 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए दोषी कौन है? मैं तो जनता को ही अपराधी, जनता को ही भ्रष्टाचारी मानता हूँ। जिस दिन साहब जनता 500 का नोट, शराब की बोतल और साड़ियां लेना बंद कर देना, तो सही लोकतंत्र का निर्माण होगा। और जो गलत है वही ये सब करता है, क्योंकि एक सामान्य अच्छा व्यक्ति, और भारत का बड़ी विडंबना है कि यहाँ अच्छे लोगों को चुन के नहीं दिए जाते, यहाँ अपराधी लोग चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, अपराधी है, उन लोग चुने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी देखो कई लोगों को तो MLA का अर्थ नहीं पता, सोचो 10-10 साल से MLA है वो। ये स्थिति है सब भारत की। मुझे तो अच्छा लगता है हरियाणा का कि उसने 10वीं पास का एक फार्मूला अडॉप्ट किया था स्थानीय स्तर की राजनीति के लिए, कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी देखिए हमारे यहाँ जो संसद में जो नगर पंचायत मतलब जो अध्यक्ष है, जो भी महिला है या पुरुष है, तो जहाँ पे महिला है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका पति। अब बताइए कितनी विडंबना है, जबकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा दिया था कि पति जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप दो शब्द नहीं कह सकते, दो बातें अधिकारी से नहीं कर सकते, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग किस लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना का पक्ष है, ये सारी चीजों पर इस पर ध्यान देना चाहिए। ये विकास का पक्ष है, ये इस पर बात होना चाहिए, और ये नहीं हो रहा है, और इसीलिए और सारी कमजोरियां बना के रखा जा रहा है स्थानीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश स्तर पे, देश के स्तर पे, कि वो कमजोरियां उन नेताओं के लिए आधार बने। आप गरीबी के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पे प्रयास करते हो तो उसका कानून बना के रखा है, लेकिन कानून का क्रियान्वयन कितने स्तर पर होता है, इसकी मॉनिटरिंग होती है क्या? इस बात पे कोई क्या ध्यान नहीं देता? वो भी तो विकास का एक पहलू है। कई जगह राशन नहीं मिलता लोगों को, राशन में गेहूं जो है राशन से बाहर जाता है, दुकान से फिर वो नागपुर जाता है ट्रकों में भरकर, इससे मॉनिटरिंग क्यों नहीं है? लोगों को सही समय पे सही चीज नहीं मिलती, तो ये भी तो विकास है ना। समाज में देखो, समाज की स्थिति में बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये भी तो विकास है। केवल सड़क बनने से विकास नहीं होता, शिक्षण संस्थाओं पे किसी का ध्यान नहीं है, उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मैं संसद की बात कर रहा हूँ बार बार कि 140 साल में यहाँ ढंग का एक कॉलेज नहीं खुला, ढंग का स्कूल नहीं खुला यहाँ पे। वो तो कुछ जनमानस की जागृति की वजह से कुछ चीजें हो रही है, नहीं तो पता नहीं कौन सा है। भाई 140 साल में विकास जो होना चाहिए उसका स्वरूप कहाँ है बताइए, फिर आप किस बात को विकास कहते हैं? जी तो इसके लिए तो मैं दोषी जनता को ही मानता हूँ।
एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर ने राजनीति का आयाराम और गया, और राजनीतिक दल और वैचारिक राजनीति के स्वरूप को वर्तमान परिवेश में किस रूप में है, इस विषय पर एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर ने मोबाइल वाणी पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। सर मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी धन्यवाद सर।
मोबाइल वाणी सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।